इसकी वाणी जो गई थी 2 जनवरी 66 तीसरे पेज का मध्य बात चल रही थी, कम आवाज करना इसको राइट की कहा जाता है। तुम विश्व के राइट मालिक बनते हो, तुम समझते हो हम कितने लायक बनेंगे और कितने राइट बनेंगे। फिर जब पतित बनते हैं तो अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते हैं, पूजे से पुजारी बन जाते हैं, आप ही पूजे आप ही पुजारी, भगवान तो पुजारी नहीं बनेंगे। आप ही पूज्य आप ही पुजारी कौन बनते हैं? जो देवता बनते हैं वो पूज्य बनते हैं। क्यों? क्योंकि देवताएं पहले पुरुषार्थ संपन्न होने से पहले पुजारी थे, जब पुरुषार्थ संपन्न होता है तो देवता बन जाते हैं। वो देवता जब नीचे गिरते हैं द्वापर से तो फिर पूजा करने लग पड़ते हैं। तो जो पूज्य बनते हैं वो पुजारी बनते हैं। मैं निराकार परम पिता परमात्मा न पूज्य बनता हूँ और न पावन बनता हूँ। भगवान न पुजारी बनेंगे न पूज्य बनते। मनुष्य तो कुछ समझते नहीं है, जो कुछ बोलते हैं सो रंग बोलते हैं। रायके तो बोलने वाला एक ही बात है, बाकी सब झूठ से बोलते हैं। रचयिता और रचना के लिए झूठ बोलते हैं। मनुष्य ऊपर रचयिता को न जाने, रचना की आदि मध्यम को न जाने तो कोई काम का नहीं। तुम जान जाते हो तो कितना उत्तर मिलता है, तुम्हारी बुद्धि कितनी सालम बन गई है, वेद के बाप से वेद का वर्षा लेने का पूरा प्रसाद कर रहे हो। यहाँ आए ही हो स्वर्ग नई दुनिया में ऊंची से ऊंचे पद पाने के लिए। तुम स्टूडेंट भी हो, स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है हमको अच्छी मार्क से पास होना है। जितना धारणा करेंगे और करावेंगे रूहानी यात्रा पर रहेंगे उतना ऊंच पद पाओगे। तुम खुद भी जानते हो ये नई बात नहीं है। कलप कलप हम बाप द्वारा पढ़ते हैं और देवी देवता बन जाते हैं। अभी संगम पर हम असुर से देवता बन रहे हैं, फिर आगे चलकर फिर असुर बन जा रहे हैं। सीढ़ी उतरते हैं, ये सब बातें तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में है इसलिए तुम सूत्रों को कन्वर्ट करके ब्राह्मण बनाते हैं। पहले शूद्र थे, शूद्रों को कन्वर्ट किया जाता है, शूद्र विकारी को कहा जाता है, विकारियों को कन्वर्ट करके फिर उनको पवित्र ब्राह्मण बनाया जाता है। बाप शूद्र से ब्राह्मण व पति से पावन बनाते हैं। पतित को पावन बनाने के लिए पतित पावन की मशीन भी जारी है, माना पतितों को पावन बनाने की जो मशीनरी है वो अभी भी चालू है, बंद नहीं हो गई है। कहते भी है पतित पावन आओ, ये पतितों को पावन बनाने वाले आओ। हम कहते हैं पतित पावन हटात अपनी खातिर एक जन्म पवित्र बनो, कोई दूसरे के लिए पवित्र बनने की बात नहीं है। और मुझे याद करो तो पार्थिव के सभी विकर्म दग्ध हो जाएंगे। पति तो पावन बाप गंगा में स्नान नहीं करावेंगे, वो पानी की गंगा में स्नान कराने की बात नहीं है, ज्ञान गंगा में स्नान करावेंगे। यह है ज्ञान स्नान की बात। समझाते हैं तुम कल कल को पूज्य से पुजारी पावन से पति तो बनते हो, फिर मैं पावन बनाने आता हूँ, पतित दुनिया में बनाने आता हूँ, पावन बनाने के लिए आता हूँ। तुम पावन दुनिया को भी जानते हो, पतित दुनिया को भी जानते हो। पावन दुनिया में जब होंगे तो पतित दुनिया को नहीं जानेंगे। और यहाँ पतित दुनिया में है तो पावन दुनिया की तुमको जानकारी। यहाँ पतित दुनिया में दुख है तो पावन दुनिया को याद करते हैं, और वहां तो होता ही सुख है। भारत पावन था, अभी पतित है, पावन बनेंगे, ये सृष्टि का चक्र है। बाकी बाहर वालों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। क्या कहा बाबा? जो भी बातें समझाते हैं, सुनाते हैं, वो बाहर वालों के लिए सुनाते हैं या ब्राह्मणों के लिए सुनाते हैं? ब्राह्मणों के लिए सुनाते हैं। बाहर की दुनिया वालों से हमारा क्या कनेक्शन? ये तो बाई प्लाट है, 84 जन्म भारतवासियों के लिए है। जो 83 या कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, वो पक्के भारतवासी नहीं। क्यों? क्योंकि कम जन्म लेने वाली आत्माएं कम पुरुषार्थ करती है। कम पुरुषार्थ करती है तो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। तो तुम हो पूरे 84 जन्म लेने वाली पक्के ब्राह्मण। जो पक्के ब्राह्मण बनते हैं तो पक्के देवता बनते हैं। तो ये सीढ़ी का चित्र भारतवासियों के लिए है। उनकी तो द्वापर से आदि होती है, दूसरे धर्म वालों की। वो 84 जन्मों में आ नहीं सकते। हमको कथा चाहिए 84 जन्मों की। रचना के आदि पर्यंत को वो जानते नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य कैसे होता है कोई नहीं जानते। कैसे होता है, है? सूर्य कहा जाता है, चंद्र कहा जाता है, सितारे भी कहे जाते हैं। सितारे ढेर के ढेर हैं, सूर्य चंद्र एक एक है। सूर्य की रोशनी से चंद्रमा भी जगमगाहट होती है और सितारों की भी जगमगाहट होती है। वो समझते हैं जड़ सूर्य सितारों की बात। वास्तव में है तुम धरती के चैतन्य सितारों की बात। तुम धरती के जो चैतन्य सितारे हो वो भी दो प्रकार के सितारे हैं। एक तो रात में चिमचिमाते हैं चंद्रमा के साथ और दूसरे वो है जो अपने प्रकाश को सूर्य में मर्ज कर देते हैं। उनका प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे नहीं कि दिन में सितारे नहीं होते हैं आसमान, होते तो है लेकिन अपने प्रकाश को सूर्य में मर्ज कर देते हैं। वो है सूर्यवंशी सितारे। एक के ही राज्य को मानने वाले, एक मत, एक राज्य, एक धर्म, एक धारणा, एक भाषा, तो वो है सूर्यवंशी। और जो चंद्रवंशी है वो रात्रि में चिमचिमाते, चंद्रमा की रहवनी में रहते हैं, चंद्रमा की से रोशनी लेता है। चंद्रमा की रोशनी भी सूर्य से आती है। सूर्य स्वयं प्रकाशित है, चंद्रमा और सितारे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो सूर्य कौन हुआ? देहद में सूर्य हुआ स्वयं परम पिता परमात्मा शिव। वो जब इस साकार सृष्टि पर आता है तो मुकर्र रथ के द्वारा ज्ञान की रोशनी देता है सारे संसार में। ऐसे नहीं कि सिर्फ सूर्यवंशियों को ही देता है, चंद्रवंशियों को भी देता है, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, सभी उसी से प्राप्त करते हैं। लेकिन पवित्रता में फर्क पड़ जाता है। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि सूर्यवंशी राज्य कैसे होता है? जो ज्ञान सूर्य है कि मत पर चलने वाले हैं, किसी और की मत पर नहीं चलते हैं, वो है सूर्यवंशी। और जो ज्ञान चंद्रमा की मत पर चलते हैं, सूर्य की मत की परवाह नहीं करते हैं, वो है चंद्रवंशी। फिर उनका राज्य चलता है। पहले सूर्यवंशियों का राज्य चलता है, फिर चंद्रवंशियों का राज्य चलता है। सूर्यवंशी पाप की लाइन में आते हैं, चंद्रवंशी फेलियर की लाइन में आते हैं। तो दुनिया इन बातों को नहीं जानती, दुनिया बदलती रहती है ये समझते हैं, परंतु कैसे बदलेगी ये पता नहीं। अब दुनिया तो बदल रही है और वो आसुरी संप्रदाय कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। विनाश होगा तो जरूर दुनिया बदलेगी। क्या कहा, दुनिया का परिवर्तन कब होगा? जब तक विनाश नहीं हुआ है पुरानी दुनिया का, तब तक पूरा परिवर्तन नहीं हो सकता। इस महाभारी महाभारत लड़ाई के बाद ही स्वर्ग बनता है, इसलिए कहते हैं गेटवे टू हेवन इज महाभारत। महाभारी महाभारत गृह युद्ध है, स्वर्ग के गेट खोलेगा। तो ये महाभारी महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, भारत अब स्वर्ग बनने वाला है, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। महाभारत का लड़ाई शुरू हो और तुम हाय भैया तोबा करने लगो, तो ये तो ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं है। जब दुनिया में खून की नदियां बहे तो तुम्हारी खुशी बढ़नी चाहिए। क्यों क्यों बढ़नी चाहिए? कि तुम्हारी बुद्धि में आता है कि ये महाभारी महाभारत लड़ाई से ईश्वर के गेट खोलेंगे, हमारी सुख की दुनिया आने वाली है, तो तुम्हारे लिए है मिरुआ मौत मलू का शिकार। क्या शिकारी जब शिकार करता है तो जानवर की तो मौत हो जाती है और शिकारी का शिकार हो जाता है, तो तुम भी एक शिकारी हो। ये दुनिया सारी जानवरों की है, जानवरों की दुनिया में सब एक दूसरे को दुखी ही देते रहते हैं, मारा मारी ही करते रहते हैं, खूंखार जानवरों की दुनिया है। तो इनका तुम शिकार करेंगे, विनाश होगा तो इन जानवरों का विनाश होगा और तुम्हारे लिए नई दुनिया आ जाएगी। आज सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। ये तो तुम भी चाहते थे कि राम राज्य हो, तुमको भिन्न भिन्न प्रकार से समझाना है, दिन प्रतिदिन समझते जावेंगे, ड्रामा में मूड है समझने की, कोई पहले समझेंगे कोई बाद में समझेंगे। सच्चाई को समझना जरूर है, सच्चाई को समझेंगे तो सच्चखंड स्थापन होगा। जो सच्चाई को समझेंगे नहीं, दूसरों को समझावेंगे नहीं, उनके लिए सत्यखंड अर्थात सत्य की स्थापन नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि का ताला भी खुला है, बाबा को पत्रों में बच्चे लिखते रहते हैं, बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोल दो, ये हमको बहुत तंग करता है। अब बाबा कहते हैं इनकी बुद्धि का ताला खुलना तो जरूर है, आज खुले या कल खुले, इनके साथ तुम्हारे जो कर्मों का हिसाब किताब है वो पूरा होगा और इनकी बुद्धि का ताला खुलना तो जरूर। तुम्हारी बुद्धि का भी ताला खुला हुआ है, पहले तुम भी कुछ भी नहीं जानते थे, अभी बाबा ने तुम्हारा ताला खोला है और माया ने गॉडरेज का ताला ऐसे लगा देती है जैसे देर ही नहीं लगती। बाप आकर ताला खोलते हैं, बुद्धि का ताला खोलते हैं और माया क्या करती है, माया ताला लगा देती है। और ताला जो लगाती है उस ताले का नाम क्या दिया है, गॉडरेज का ताला। गॉडरेज की अलमारी होती है ना, है होती है ना, ऐसे ही गॉडरेज का ताला भी होता है। वो तो स्कूल अर्थ में समझ लेते हैं, बेहद का अर्थ है गॉड माना भगवान, रेज माना किरण, भगवान की किरणों का ताला है ये, है ना। भगवान ज्ञान सूर्य की किरणों के आधार पर जो जीवन नहीं चलाते हैं तो उनकी बुद्धि माया बंद कर देती है, और भगवान की किरणों के आधार पर जो अपने जीवन को चलाते हैं उनकी बुद्धि खुली रहती। तो गॉडरेज का ताला है जिनका तार लग जाता है वो समझते ही नहीं कि भारत स्वर्ग था। 84 जन्म के बदले 84 लाख योनिया कह देते हैं। अब 84 लाख योनियों में तो जन्म लेंगे, 84 लाख योनिया होती है लेकिन मनुष्य 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि मनुष्यों में ही जब सब प्रकार के पाप पुण्य भोगे जा सकते हैं तो दूसरी योनि में जन्म लेने की क्या दरकार। मनुष्य जो है वो मनुष्य ही रहेगा, जानवर जानवर ही रहेगा। कोई कहे जानवरों ने क्या बिगाड़ा, जो बेचारे जानवर ही रहेंगे। कीड़े मकोड़ों ने क्या बिगाड़ा, जो बेचारे कीड़े मकोड़े ही रहे। अरे ये बिगाड़ने की बात हो रही है, ये तो अपनी अपनी जाति है। कीड़े मकोड़ों की जाति ही ऐसी है, कीड़े को निकाल करके नाली में से धूप की रोशनी में रख दो साफ सुथरी जगह पे, तो कीड़ा मर जाएगा या जिंदा रहेगा? मर जाएगा। बाप कहते हैं तुम्हारी तो मनुष्य होनी है तो दूसरों की चिंता क्यों करते हो, पहले अपनी तो चिंता करो। तुम सुधर जाएंगे तो सारी सृष्टि सुधर जाएगी, तुम जब बिगड़ते हो तो सारी सृष्टि बिगड़ जाती है, तुम्हारे ऊपर सारा मजा है। उन्हें कीट पशु पक्षी पतंगों में मन बुद्धि नहीं होती और तुम्हारे अंदर मन बुद्धि है, तो मन बुद्धि की पावर से तुम सारी सृष्टि को कंट्रोल कर सकते हो। तो भगवान भी आकर, जिस भगवान को बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है, वो तुम बच्चों को आकर के पढ़ाते हैं। क्यों? बुद्धिमान बाप आकर के बुद्धिमान बच्चों को पढ़ाते हैं, जो जानवरों को नहीं पढ़ाने आता है। साथ में लिख दिया है कि भगवान ने घोड़े का अवतार लिया, भगवान ने कछुए का अवतार लिया, भगवान ने मछली का अवतार लिया। अब भगवान जानवरों को सुधारने के लिए आएगा क्या? जानवरों को सुधारेगा या मनुष्यों को सुधारेगा? पढ़ाई कौन पढ़ेगा? जानवर पढ़ाई पढ़ते हैं कि मनुष्य पढ़ाई पढ़ते हैं? मनुष्य पढ़ाई पढ़ करके सुधर सकता है, लिख पढ़ के होशियार बन सकता है। तो भगवान भी आकर के मनुष्यों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, मनन चिंतन मंथन की उनमें गति होती है, और जिनमें मन चिंतन मंथन की गति होती है वो अपने को मूल्य कर लेते हैं। तो अभी बाप 84 जन्मों का राज बैठ तुम बच्चों को समझाते, कहते हैं बच्चे अभी तुमको नई दुनिया में चलना है। परम पिता परमात्मा जो नई संप्रदाय रचते हैं, वो नई संप्रदाय ही फिर देवता बनेगा। 2 जनवरी 66 की वाणी का 4वां पेज। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, पवित्र बनने के शूद्रों और शूद्र ही बने रहे तो उनके जीवन में पवित्रता के लक्ष्य की बात नहीं। लेकिन बाप आकर शूद्रों को ब्राह्मण किस लिए बनाते हैं? बनाते इसलिए है कि शूद्र जो है वो ब्राह्मण बनते हैं, इसलिए कि वो पवित्र बने। अभी भी ब्राह्मण पतित है, कोई भी ब्राह्मण ये नहीं कह सकता कि मैं पावन बन चुका हूँ, मेरी दृष्टि वृत्ति पावन बन चुकी है। पवित्र बनना है, मानव ब्राह्मणों के लिए लक्ष्य होता है पवित्र बनने का। यह है पवित्र बनने का संगम युग। क्या? यह पुरुषोत्तम संगम युग है पवित्र बनने के लिए, पतितों का विनाश हो रहा है। इस संगम युग में पतित जरूर विनाश को पाएंगे और पावन दुनिया की स्थापना होनी है। तुम संगम पर हो और तुम ब्राह्मण धर्म में हो। ब्राह्मण धर्म से फिर देवता धर्म में आवेंगे, देवी देवता बन जाएंगे। तो बाप आकर ब्राह्मण और देवता धर्म स्थापन करते हैं क्या? आकर के स्थापन करते हैं देवता धर्म। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के मुख से आकर के ज्ञान सुनाते हैं और ब्राह्मण धर्म स्थापन हो जाता है फिर देवता हम अपने आप बनते रहते हैं। नहीं, यहाँ बोला है बाप आए यानी आकर के ब्राह्मण धर्म की भी स्थापना करते हैं और देवता धर्म की भी स्थापना करते हैं, देवता बन जाने और ब्राह्मण धर्म गुम गुम हो जाते। अभी जब तक देवता नहीं बने हैं तब तक ब्राह्मण धर्म चालू है, तो देवता धर्म होगा ये तो आप ही जानते हैं। अभी है शुद्ध धर्म, फिर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्मों की स्थापना होती है। अभी तुम सब पुरुषार्थ कर रहे हो, काहे के लिए? संपूर्ण ब्राह्मण बनने के लिए, संपूर्ण ब्राह्मण को देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, देवता बन नहीं गए हो या पवित्र ब्राह्मण अभी बन नहीं गए हो, तो बच्चों को पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। तुम कल्याणकारी बाप के संतान हो, कल्याणकारी हो, मददगार बनते हो। अगर कल्याणकारी बाप के कल्याणकारी मेंटेलिटी वाले बच्चे नहीं बने तो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? दूसरों का कल्याण नहीं करेंगे तो तुम्हारा अपना भी कल्याण नहीं होगा। तो बाप कितनी सारी कहानी बैठ बताते हैं, आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो पूजे थे वो पुजारी बने, बाद में उतर की कला हो जाती है। तो फिर देवता से क्षत्रिय बनते हैं, फिर वैश्य बनते हैं, इतने 84 जन्म तो लेना ही, क्योंकि सीढ़ी उतरते रहते हैं। ब्राह्मण है चोटी, मनुष्य के शरीर में सबसे ऊंचे स्थान पर चोटी होती है, तो ब्राह्मण है सबसे ऊंचे धर्म चोटी का धर्म। अभी तुम ब्राह्मण बने हो और शिव बाबा है ऊंचे से ऊंचे। पहले ब्राह्मण चोटी में गांठ लगाते थे, तो जो गांठ लगाते थे उसमें गोल गोल शिवलिंग बन जाता था। तो चोटी सबसे ऊंची है, लेकिन चोटी में भी शिव बाबा है सबसे ऊंचे। तो शिव बाबा को कहते हैं ऊंचे से ऊंचा करता, फिर होते हैं चोटी समान ब्राह्मण। तो देवी देवता धर्म जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण होते हैं वो ही स्थापन करते हैं। अभी तुम बनते हो तो कोई कोई समझाना तो बहुत सहज है, कुछ न कुछ समझाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या था? कोई कहते हैं हमको समझाना नहीं आता, हमारी समझ में तो सब बात आ जाती है, सुनते भी हैं और समझ भी लेते हैं, लेकिन हम दूसरों को नहीं सुना सकते। तो बाबा कहते प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा किसी को समझाओ, छोटे बच्चों को बैठ बैठ समझाओ, बूढ़ी माताओं को बैठ समझाओ, ऐसे करते करते तुम्हारी वाचा खुल जाएगी। कुछ न कुछ समझाने का पुरुषार्थ करना ही चाहिए। शिव बाबा को याद करते रहो, हम शिव बाबा की संतान है, याद से भी तुम नई दुनिया में जानेंगे। क्या कोई कहे कि हम तो नहीं समझा सकते, हम हिम्मत हार गए? तो बाबा कहते कोई बात नहीं, तुम याद से भी नई दुनिया में जा सकते हो। जाएंगे योग से विश्व की बात आई, तो जब योग मन से विश्व की बात नहीं पाई जा सकती है तो क्या स्वर्ग में नहीं जाया जा सकता? तुम याद के बल पर भी स्वर्ग में जा सकते हो। کوئی کی تقدیر میں نہیں ہے تو پھر باپ کیا کریں گے؟ بابا کا آگیا کاری تو بننا چاہیے نا. باپ سمجھاتے رہتے بچے ایک تو یاترا پر مت رہو. کتنے بچے یار کی یاترا پر رہتے ہی نہیں, یار کی یاترا کرنا بھول جاتے ہیں, ٹھہر جاتے. کون سی یاترا ہے ان کی؟ تو جسمانی یاترا ہوتی ہے, دیہ کی یاترا کرتے ہیں, جسم کو یاترا کراتے ہیں, اور تمہاری ہے روحانی یاترا. تم اپنی روح کو اونچی اسٹیج میں دوڑاتے رہو, اڑاتے رہو. جو بچے شیو بابا کو یاد نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا پائیں گے؟ اگر جو یاد کرتے ہوں گے تو اوروں کو بھی یاد کراتے ہوں گے. یاد سے جن کی اچھی اوستھا بنتی ہے ان کو دیکھ کر کے دوسروں کی بھی اچھی اوستھا بن جائے گی. یاد کا جو چہرہ ہے وہ دوسروں کو بھی یاد دلاتا ہے, آٹومیٹک سرو سے بن جاتا ہے. جاتے بھی ہیں, بابا آپ آئیں گے تو ہم آپ کے ہی بن کر کے رہیں گے, آپ آئیں گے تو آپ کے ہی بن کر کے رہیں گے اور کسی کے بنیں گے نہیں. پتی کا پاون تو ایک نراکار ہی ہے نا, اس کے سوائے تو کس کو بھی نہیں کہا جا سکتا. تو بچوں کی سروس میں بدھی چلنی چاہیے کہ ہم دوسروں کی سیوا کیسے کریں. یہ ترمورتی تو جیسے ٹریڈ مارک ہے, جیسے کوئی وستو مارکیٹ میں بیچی جاتی ہے, کوئی دوائی بیچی جاتی ہے تو اس میں ٹریڈ مارک لگاتے ہیں, تو ایسے ہی تمہاری ترمورتی جو ہے وہ ٹریڈ مارک ہے. پرانی دنیا میں سے نئی دنیا میں لے جانے کے لیے, پتیوں کو پاور بنانے کے لیے یہ تمہاری مشینری ہے, ٹریڈ مارک ہے. اس ٹریڈ مارک سے تم کسی کو بھی سمجھا سکتے ہو. اس گورنمنٹ اور یہ دونوں, اس گورنمنٹ کی بھی ٹریڈ مارک رکھنی چاہیے اور اس گورنمنٹ کی بھی ٹریڈ مارک رکھنی چاہیے. ٹریڈ مارک مانے اس گورنمنٹ کی ایسے مورتی جانور شیروں کی مدرا ہوتی ہے, نوٹ ہوتے ہیں اس میں تین شیر دکھاتے ہیں, تو ان کی ہے جانوروں والی ٹریڈ مارک اور ہماری ہے تین دیوتاؤں کی ٹریڈ مارک. دونوں رکھنا چاہیے, ایک بازو میں وہ بھرشٹاچاری گورنمنٹ کی ٹریڈ مارک اور ایک بازو میں شیشاچاری گورنمنٹ کی ٹریڈ مارک. اور پھر پوچھنا چاہیے کہ ان میں سچی کون سی ہے اور جھوٹی کون سی ہے, تو بدھی میں سمجھ میں آئے گا. جھنڈے میں بھی, جھنڈے میں بھی تین شیر دکھاتے ہیں. باپ کہتے ہیں یہ تین شیروں کی بات نہیں ہے, کوئی جانوروں کی بات نہیں ہے, یہ تو جانور بدھی بن جاتے ہیں. جو ستیہ کے آدھ میں دیوتا تھے وہ کلیت کے آدھ میں جانوروں میں سب بن جاتے ہیں. ان جانوروں کو آ کر کے جان سنا کر کے دیوتا جیسا بناتا ہوں, مندر سے مندر لائق بناتا ہوں. تو انہوں نے جانوروں کی ترمورتی رکھ دی, واسطے میں ہونی چاہیے تین دیوتاؤں کی ترمورتی. دیوتا برہما وشنو اور شنکر, ان تری دیو کے دوارا ساری دنیا کے اوپر وجے پراپت ہوتی ہے. اس لیے انہوں نے جنتا گان بنا دیا ہے وشو وجے کر کے دکھلا دیں. ارے کپڑے کا جھنڈا تھوڑے وشو وجے کرے گا, کوئی کہتا ہے منوشیا آتما وشو کے اوپر وجے پراپت کریں گی, یہ جھنڈا کرے گا کپڑے والا. کپڑے کے جھنڈے کی بات نہیں ہے, واسطو میں یہ شریر ہی کپڑا ہے. یہ شریر جو کپڑا ہے وہ تین پرکار کا جھنڈے میں دکھایا ہے. ایک تو کرانتی کرنے والا شریر شنکر کا دکھایا ہوا ہے, خونی کرانتی کا ہے دیتا ہے. خون دو پرکار کا ہوتا ہے, एक होता है संकल्पों का फूल और एक होता है स्थूल खून। जब स्थूल लड़ाइयां होती है तो स्थूल खून की नदियां बहती और जब संकल्पों का युद्ध चलता है तो संकल्पों का फूल बहता है। दोनों प्रकार की लड़ाइयों से नुकसान बहुत होता है आत्मा का। तो बाप भाई समझाते हैं कि ये तीन शेरों के द्वारा मैं आकर के स्थापना पालना और विनाश का कार्य कराता हूं, नई सृष्टि की स्थापना कराता हूं ब्रह्मा द्वारा। हाँ, ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा या विष्णु या शंकर, ये ज्ञान की ऐसी दहाड़ मारते हैं संसार रूपी जंगल में, ये तो दुनिया जानवरों की है, ऐसी दहाड़ मारते हैं कि चारों ओर ये जंगल में शेर का गुंजायमान आवाज हो जाता है। ऐसी आवाज गूंजती है कि कोई भी प्राणी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं रहता जो उस ज्ञान से वाकिफ न हो जाए। ये तुम्हारी ट्रेडमार्क है, दोनों को आमने सामने रखना चाहिए। ऊपर में शिव बाबा को हम दिखाते हैं और नीचे तीन देवता, ये ईश्वरीय गवर्नमेंट के इनकॉग्निटो है, माना गुप्त गवर्नमेंट है। गुप्त गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि गाया हुआ है पांडव गुप्त थे, गुप्त पांडवों की गुप्त गवर्नमेंट है। दुनिया ऐसे गुप्त गवर्नमेंट को नहीं जानती, लेकिन तुम अंदर अंदर अपनी राजा ही स्थापन कर रहे हो गुप्त की। तो आसुरी गवर्नमेंट कागनीतो है, वो प्रत्यक्ष है, और तुम्हारी गुप्त गवर्नमेंट है। तुम्हारी मिलिट्री भी है, तुम्हारी रूहानी मिलिट्री है, ये भी गुप्त है। उनकी जिस्मानी मिलिट्री होती है वो प्रत्यक्ष होती है। दोनों की कोर्ट ऑफ आर्म्स रखने चाहिए। कोर्ट ऑफ आर्म्स मन वो त्रिमूर्ति नहीं, उनकी जानवरों की त्रिमूर्ति है तीन शेरों वाली, और हमारी है तीन देवताओं की त्रिमूर्ति। तो बोला ये कोर्ट ऑफ आर्म्स रखने में कोई नुकसान नहीं है। बाप ब्राह्मणियों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं, क्या कहा है ब्राह्मण क्यों नहीं कहा? ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाते हैं ऐसे क्यों नहीं कहा? ब्राह्मणियों द्वारा बनाते हैं ऐसे क्यों कहा है? पुरुषों को क्यों नकार रहे हैं? क्योंकि पुरुष हाँ सब दुर्योधन दुशासन होते हैं। एक आम तो पाएकर बाप वार करने में चूकते नहीं है। तो बाप कहते हैं मैं कन्या माताओं के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराता हूँ, ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ और गोपों द्वारा विनाश कराता हूँ। शंकर भी गोप मूर्ति में तीन मूर्तियां है ना, एक तरफ ब्रह्मा बैठा हुआ है तो दूसरी तरफ शंकर बैठा हुआ है। ब्रह्मा तो है ही ब्रह्मा, माने बड़ी अम्मा, वो तो माता ही ठहरी स्वभाव संस्कार से। शंकर को कोई माता नहीं कहेगा, तो शंकर द्वारा विनाश ब्रह्मा द्वारा स्थापना। बीचे तरमंथन से भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं, पावन बनाते हैं। भाषण तो बच्चों को ऐसे करना चाहिए, बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म है, तुम पवित्र वन मेरे द्वारा स्वर्ग का राजभाग ले लो, किसके द्वारा ले लो, मेरे द्वारा, माना मैं खुद ही आकर के तुमको राजभाग स्वर्ग का देता हूँ, दूसरा कोई मनुष्य गुरु स्वर्ग या राजभाग नहीं दे सकता। तो मुझे याद करो तो तुम्हारे विकल्प भी नाश हो जाएंगे। क्यों मुझे याद करो ऐसे क्यों कहा? एक ब्रह्मा को याद करो तो तुम्हारे विकल्प भी नाश क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जैसे को याद करेंगे वैसी ही अवस्था बनेगी। ब्रह्मा की जो अवस्था है, ब्रह्मा को याद करने वालों की वही अवस्था बनेगी। जैसे ब्रह्मा ने हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ा, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी ब्रह्मा को याद करने वाली जब शरीर छोड़ती है तो मोस्टली क्या होता है, उनका भी अचानक मौत होता है। तो जैसे को याद करते हैं वैसी है गति बन जाती है, अंत बचे जो गति। बाप कहते मेरे द्वारा मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारी सदगति होगी और राजभाग ले सकते हो स्वर्ग का, लेकिन मेरे द्वारा, है ना। वो परमात्मा बाप स्वयं परमात्मा के रूप में शक्ति पर प्रत्यक्ष होता है, परम पिता के रूप में, सर्वशक्तिमान के रूप में शक्ति की शक्ति पर प्रत्यक्ष होता है। तो जो स्वयं शक्तिमान होगा उसकी याद में जो रहेंगे वो भी शक्तिमान बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे तो राजभाग लेंगे, राजा ही प्राप्त करेंगे, और कमजोर की याद करेंगे तो कमजोर बनेंगे। इसलिए बोला मुझे याद करोगे तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्म माना जो विपरीत कर्म तुमने किए हैं, श्रीमत के बरखिलाफ कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, वो तुम्हारे साथ भस्म हो जाते हैं। मुझे याद करने क्योंकि मैं ऐसे कर्म करता हूं जिसमें कोई पाप कर्म बनता नहीं। इतनी सहज बातें बताते हैं। अच्छा नीचे नीचे सब बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया, गुड मॉर्निंग रूहानी बच्चों को रूहानी बात किया, डायरेक्शन बाबा सभी सेंटर के प्रति डायरेक्शन दे रहे हैं कि हर सोमवार को रात को भोजन नहीं बनाना है। अरे बाबा का नाम क्यों लगा दिया? मुरली के बाद जो डायरेक्शन दिया भोजन नहीं बनाना है, ये बाबा बोल डायरेक्शन हो नहीं सकता। किसका हो सकता है? कोई दीदी दादी का डायरेक्शन हो सकता है। अच्छा तो ये है उनतीस ग्यारह सौ पैंसठ की सातवें क्लास। पेज तीन के आदि में बात चल रही थी कि सिवाय एक के और किसी को बाबा नहीं कहा जाता है। क्या शिव बाबा सिर्फ एक को कहा जाता है और कोई दूसरे को बाबा शिव बाबा नहीं कहा जाता? क्यों? क्योंकि शिव मुकर्रर रथ में आता है, एक ही रथ में आता है कांस्टेंट, और दूसरे कोई रथ में आता नहीं है। आता भी है तो कोई कह नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा आया हुआ है। जो कहते हैं कि मेरे अंदर शिव बाबा आया वो झूठे हैं। शिव बाबा को ये कहने की दरकार नहीं है कि मैं शिव बाबा हूँ या मेरे अंदर शिव बाबा आता है, वो तो स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाए। गुरु नानक भी कोई बाबा थोड़े ही है, बताओ गुरु नानक से क्या वर्षा मिलता है? कोई भी धर्म पिता से कोई वर्षा नहीं मिलता सुख शांति का, तो गुरु नानक से कैसे मिलेगा? कुछ भी कोई बता नहीं सके। कोई जो पूछो क्राइस्ट ने वर्षा दिया क्या? उन्होंने तो लड़ाई करके राजा की स्थापन की है। पिछले लोगों ने लड़ाई की उस समय क्राइस्ट की आत्मा आधा पुनर्जन्म ले चुकी होगी। ये तो जब धर्म की वृद्धि होती है, धर्म के ज्यादा लोग बढ़ जाते हैं तब राजाई चलती है। ऐसे थोड़ी है क्राइस्ट ने कोई राजाई की, क्राइस्ट राजाई दे नहीं सकता। राजाई तो बाप ही आकर के देते हैं। राजाई अपने पुरुषार्थ से ड्रामा प्लान अनुसार मिलती आई है, ऐसे कहेंगे। मनुष्य तो किसी को कुछ दे ही नहीं सकता, अगर देते भी हैं तो अल्पकाल के लिए देते हैं, अल्पकाल का सुख देते हैं। अभी तमो प्रधान है और माया का जोर बहुत है, तो तुम बच्चों को अभी माया से युद्ध करनी है। माया को जीतेंगे तो जगत जीत करेंगे, अगर माया को नहीं जीता तो जगत जीत नहीं बनेगी। माया क्या है? मां आया, मां माने नहीं, आया माने आया। मैं ना आया होता तो ज्यादा अच्छा होता। क्या? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ना आया होता तो अच्छा होता, ये आया तो बुरा हो गया, तो उसको कहते हैं माया। माना जो आती है इस रूप में और हमारा बुरा करके चली जाती है, हमको कमजोर बना के चली जाती है। पांच विकारों को माया कहा जाता है। तो तुम बच्चों को माया जीत बनना है। जितना जितना माया जीत बनते जावेंगे उतना उतना जगत जीत बनते जावेंगे। मनुष्य शांति में रहने के लिए कितना माता मारते हैं, मन थोड़े ही शांत हो सकता है। ये तो कुछ सीखते हैं तो अनकॉन्शियस में चले जाते हैं, उसमें मेहनत लगती है। कोई कोई की तो ये सीखने करने में ब्रेन ही खराब हो जाती है। बाप समझाते हैं अगर कोई कर्म बंधन में अथवा मित्र संबंधी आज में बुद्धि जाती रहेगी तो तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होगी। विकर्म विनाश कब होंगे? जब अब विचारी याद में रहेंगे, एक ही याद में रहेंगे तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे, और मित्र संबंधियों की याद बीच बीच में आती रहेगी तो तुम्हारे पाप कर्म दब्ध नहीं हो पाएंगे। तो उनकी प्रैक्टिस तो बढ़ेगी याद करने की, लेकिन फायदा उतना नहीं होगा। फायदा कब होगा? जब फायदा होगा तो एक की याद करने से फायदा होगा, अनेकों की याद करने से फायदा नहीं होगा। तो देहधारी की बुद्धि हटाना है, सब देहधारियों को भूल जाओ, ऐसे हो सकता है? कि देहधारियों के साथ रहे भी और उनको भूले, उनका संग करेंगे तो बुद्धि को संग का रंग नहीं लगेगा, है? ऐसे हो सकता है। अगर हमें ऐसे को याद करेंगे जिस पर कोई संग का रंग नहीं लगता, उस निराकार ज्योति परम पिता परमात्मा को याद करेंगे तो हमको भी कोई संग का रंग नहीं लगेगा। ऐसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। मनुष्यों को तो संग का रंग लगता है, चाहे वो रामकृष्ण जी की आत्मा क्यों न हो, उनको भी संग का रंग लगता है। लेकिन जो सुप्रीम सोल शिव है वो ऐसी आत्मा है जिसको कोई संग का रंग नहीं लगता। तो ऐसे परमात्मा बाप को तुम याद करेंगे तो तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। इसलिए बाप कहते हैं सबको भूल जाओ। इसके लिए सबसे अच्छी युक्ति है आप मुए मर गई दुनिया। अगर खुद अपने को इस दुनिया से देह और देह के संबंधों से मार लेंगे तो सारी दुनिया तुम्हारी लिए मर जाएगी। दुनिया को याद करते हो तो तुमको दंड बढ़ता जाएगा। तुम कहते हो बाबा हम तो मर चुके, किससे मर चुके? देह और देह के संबंधों से मर चुके। दुनिया अगर हमको कुछ भी कहती है, ग्लानी करती है, गालियां देती है, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर न पड़े तो समझो जैसे हम उस दुनिया से मर गए, हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। तुम बाप के बनते नहीं हो, गोया बुद्धि एक तरफ नहीं होती। मित्र संबंधियों की तरफ बुद्धियों क्यों जाता है? तो गोया तुम मरे हुए नहीं हो ना, बाबा के बने ही नहीं हो। बहुत है जिनको रात दिन कर्म संबंधों का ही चिंतन चलता रहता है, संबंधियों को ही याद करते रहते हैं। वो संबंधी याद आते रहते, यहाँ बाप की गोद में रहे, सच्चाई से रहे तो जैसे मर करके रहे। बाप के बन गए तो फिर बुद्धियों में इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। क्या माना? जो बाप के लिए सरेंडर हो जाते हैं, समर्पण हो जाते हैं, उनकी बुद्धि में दुनियादारी कुछ भी याद नहीं आनी चाहिए। अगर बुद्धियों को मैं वहां भटकता रहेगा तो फिर नीचे ले जा रहे हैं। सन्यासी घरवार छोड़ते हैं, घरवार छोड़ गए गोया मर गए घरवार वालों के लिए। अगर घरवार याद पड़ता रहेगा तो फिर वो योग में कैसे रहेंगे? उसको घर में लौट आते हैं, कोई तो फिर बहुत पक्के होते हैं, बिल्कुल दुनियादारी को याद नहीं करते। बुद्ध योग अगर बाहर जाता रहता है तो तुम बच्चे योग उनको बदल नहीं पाए। क्या पहचान बताइए? कि जो बच्चे ईश्वरीय सेवा में सरेंडर हो गए, सरेंडर होने के बाद अगर बुद्धि उनकी बाहर भागती है तो इसका मतलब वो उच्च पद पाने वाले नहीं है। भले राजघराने में आएंगे क्योंकि सरेंडर हुए हैं, तो 16,000 के राजघराने में 16,000 की माला में तो आ ही जा रहे हैं, लेकिन पद क्या पाएंगे? दासदासी बनते हैं, राजघराने के भी चरकार बनते हैं, दासदासी बनते हैं, तो ऐसा पद पाते रहेंगे। बाप कहते हैं ऐसे नहीं करना, बहुत पक्का बन करके रहना, बच्चों को फॉलो करना चाहिए, माँ बाप को कुछ भी वो नहीं जाना चाहिए। परंतु कोई कोई बच्चों की तकदीर में नहीं है तो फिर मर करके भी उस तरफ चले जाते। 5% बुद्धियोग यहाँ रहता है और 95% बुद्धियोग बाहर की दुनिया में रहता है। क्या जैसे मुसलमान होते हैं ना, मुसलमान रहते तो हिंदुस्तान में, और याद कहाँ करते हैं? काबा को, अरब देश में जो उनका काबा है उसको याद करते हैं। रहना उनका हिंदुस्तान में होता है, खाना उनका हिंदुस्तान में होता है, सोना उनका हिंदुस्तान में होता है, शादी मुरादी सब कुछ हिंदुस्तान में होती है, और बुद्धियों कहाँ रखते हैं? अरब देश में काबा में, तो उनको मुसलमान कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम तो देवी देवता सनातन धर्म के हो, तुमको जहाँ रहना है, जहाँ सोना है, जहाँ खाना है, जिसका संग का रंग लगाना है, तो क्या करना चाहिए? तुमको उसी को याद करना है। तुम तो एक के बन गए ना, एक के बन गए तो एक में ही बुद्धि रमानी चाहिए। एक के बन गए माना दुनिया से खलास हो गए, मर गए। इस वेद के संन्यास में कोई बिरला आ सकते हैं क्या? भले 16,000 सरेंडर होते हैं, लेकिन इस वेद के संन्यास में जो बाप बताते हैं उसमें कोई बिरले बिरले निकलते हैं। माला का मड़का भी कोई बनते हैं जो इस वेद के संन्यास में आते हैं। ये तो तकदीर है, अगर उस दुनिया से मर गए तो फिर पुराना संबंध याद क्यों होना चाहिए? जो घर में रहते हैं उनको तो बहुत मेहनत लगती है, क्या पुरुषार्थ करने में जो घर गृहस्थ में रहते हैं, बाहर की दुनिया में रहते हैं, उन लोगों को पुरुषार्थ करने में बहुत मेहनत लगती है, उतनी याद नहीं आती, उतना बुद्धियों का खिंचता नहीं है। लेकिन जो सदैव बाबा के सामने रहे पड़े हैं, बाबा के घर में रहे पड़े हैं, उनके लिए तो सहज होना चाहिए क्या याद करना, क्योंकि सामने। परंतु देखा जाता है जो यहाँ वाले हैं, माना बाबा के घर में रहते हैं, उनको और ही जास्ती मेहनत लग रही है, बाहर वालों को उतनी मेहनत महसूस नहीं होती और अंदर वालों को इतनी मेहनत महसूस हो रही। बाहर में रहने वाले बड़े पीछे चले जाते, इसलिए बाबा बोलते हैं अंदर वालों से बाहर वाले पीछे चले जाते, अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे, क्योंकि उनका किसी को मोह नहीं रहता, ऐसा तीखा पुरुषार्थ करते हैं ना, समझते हैं कहाँ ये बंधन छूटे तो हम सर्विस में लग जाते, वो भी देखना पड़ता है कि ज्ञान में पक्का है या नहीं है। अगर ज्ञान में कच्चा होगा, अगर कोई सरेंडर हुआ और ज्ञान में कच्चा है और पति आने को लग पड़ा तो फट से नमक पड़ जाते, कहेंगे अच्छी रीति मरे ही नहीं है, जैसे फट पर नमक पड़ता है। यहां तो बाबा कहा और बस मरे, बाबा जी बन गए फिर पुराना संबंध छूट जाना चाहिए, वो पुराने संबंधी और उनके कर्म जाने, हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं, हम तो अब ये किनारा इस दुनिया का छोड़ दिया, कोई परवाह नहीं करना चाहिए, हम क्यों ख्याल करें। तो इतनी उछाल होनी चाहिए, ऐसे बहुत थोड़े बच्चे हैं, जब बाप मिल गया जो बापों का बाप है, पतियों का पति है, तो ऐसे को पाने के बाद फिर दूसरों की परवाह क्यों करनी चाहिए, हिम्मत चाहिए। कोई को कोई रोक देते हैं, मारते हैं, कि तुम यीशु की सेवा में क्यों इतना भाग दौड़ करते हो, क्यों इतना मरते हो, जाने नहीं देते, क्लास करने नहीं देते हैं। तो अगर कोई मारते हैं तो झट गवर्नमेंट के पास जा करके बोलो कि हम परमपिता परमात्मा से वर्षा लेना चाहते हैं और ये हमको रोकते हैं, ये हमारी मारपीट करते हैं, चोट का निशान हो और जाके पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए, ये हमको मारता है, हम कोई जानवर है क्या। अरे जानवरों को भी कोई मारता है तो उसको भी सजा हो जाती है, हम तो मनुष्य हैं, तब मार नहीं खाना चाहिए। पर इतनी हिम्मत हो ना, इतना नष्ट हुआ हो तब ना। तो गवर्नमेंट हिसाब किताब पूरा कर देगी, तुमको अलग उनसे कर देगी, बोलना चाहिए हम पवित्र रहना चाहते हैं, हम पवित्र वर्ग परम पिता परमात्मा से वर्षा लेना चाहते हैं, ये हमको पवित्र नहीं रहने देते, इसलिए हम इनसे अलग होना चाहते हैं। तो उनको जरूर गवर्नमेंट छुट्टी दे देगी, समझाना चाहिए। जज साहब आप भी समझते हो ना, भारत में देवताओं का राज्य था, देवताएं तो पवित्र होते हैं, देवताओं का राज्य था, हम वही देवताएं राज्य लाने के लिए हम परमात्मा के सहयोगी बने, ईश्वरीय सेवा में लगे हैं। देवताओं का जब राज्य था तो पवित्रता भी थी, सुख शांति भी थी, कहते भी है वेर इज प्योरिटी देर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, जहाँ पवित्रता होती है वहाँ सुख संपत्ति भरपूर होती है, सुमति होती है, सुंदर बुद्धि होती है तो सुख संपत्ति से भरपूर रहते हैं। अभी सुख संपत्ति नहीं है क्योंकि अपवित्र है, जब अपवित्र बन जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। आज भारत दुखी है क्योंकि भारत में बहुत अपवित्रता है, घर घर में मिट्टी के चूल्हे हो गए हैं। तो जन को बुद्धि में बैठेगा कि हाँ ये बात तो ठीक कहता है, पहले भारत में सुख शांति थी, अभी दुख अशांति है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, अब मैं विघ्न कैसे दूं। यह बात जन की बुद्धि में बैठनी चाहिए, झट को झट जजमेंट दे देगा, परंतु सच्ची दिल से बोलना चाहिए। अंदर से विकारों की जितनी भरी हुई हो और ऊपर से तुम बोलते रहेंगे तो जज के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बच्चों को सीमत पर चलना पड़े। बाप जो सीमत देते हैं वो मत खुद भी माने और दूसरों को भी बता दें। अच्छा, माँ पिता बाप दादा का शिक्षण दे बच्चों को, याद क्या गुड मॉर्निंग। कैसे योग बल से विश्व की बात चाहिए अभी
ना?
अभी अभी नहीं चल रही, अभी तो तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होता ना। ब्राह्मणों की दुनिया में पहले तीसरी मूर्ति विष्णु की प्रत्यक्ष हो तब शुरुआत हो। अभी ये जो दूसरी मूर्ति का संगम है वो संगम का टाइम पूरा हुआ, अभी तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हो तो उसका संगम शुरू हो, फिर सत्युग की शूटिंग शुरू हो। सत्युग फिर त्रेता फिर द्वापर फिर कलयुग फिर चारा युग की शूटिंग शुरू हो। और कोई ड्रामा होता है
तीनों मूर्तियाँ प्रत्यक्ष हो जाएगी, तो
तीनों मूर्तियाँ प्रत्यक्ष हो, तीनों का काम भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। काम पर क्या रह जाएगा?
चार युग रिपीट हो गया ना,
बिल्कुल रिपीट होगा। अभी क्या, अभी क्या ड्रामा संपन्न हो गया? हाँ, तो नाटक तब तक जब तक संपन्न नहीं हो जाता है तब तक शूटिंग या रिहर्सल चलती रहती। वो फिल्म खींचने वाले होते हैं ना, वो भी फिल्म एक बार बनाएंगे फिर बिगाड़ देंगे, फिर बनाएंगे फिर बिगाड़ेंगे, फिर बनाएंगे फिर बिगाड़ेंगे, तब तक बनाते बिगाड़ते रहेंगे जब तक फाइनल हो जाए। ये भी शूटिंग हो रही, रिहर्सल होती रहेगी, ऐसे थोड़े कि अब क्या होगा।
अभी समय कितना शूटिंग चल रहा है? अभी समय
कितना शूटिंग चल रहा है?
मतलब
क्या क्या कलियुग का शूटिंग हो रहा है? कलियुग शूटिंग का तब प्रधान पीरियड भी खत्म होने वाला है, उसमें भी संगम जग गया और संगम का भी पीरियड खत्म होने वाला है। अभी तीसरी मूर्ति की शूटिंग का काम शुरू होगा।
क्या
हाँ उर्ग वर्ष भी पूरा हो रहा है,
होने के बाद क्या शूटिंग शुरू होगी?
तीन मूर्तियां हैं, तीन मूर्तियों के 33-33-33 साल जोड़ दो, 100 साल हो जाएंगे। 100 साल का संगम है तो 100 साल में ब्रह्मा के 33 वर्ष 33 ईयर्स, शंकर के दूसरी मूर्ति के 33 ईयर्स 66 साल हुए, 33 साल और बचे। ये 33 साल जब पूरे होंगे 2036 तब काम पूरा हो जाएगा। हरियाणा का काम पूरा, फिर ब्राड ड्रामा शुरू होगा। ब्राड ड्रामा का बड़ा सीन
वैष्णो देवी कब आएगा?
वैष्णो देवी माने तीसरी मूर्ति, दूसरी मूर्ति का काम खत्म हुआ तो तीसरी मूर्ति आ जाएगी। ये तो तीन शेर है ना, जंगल कांटों का जंगल है, ये जानवरों का जंगल है, जानवरों के जंगल में एक शेर चाहिए ना। ब्रह्म का काम खत्म।
थोड़ा माता को संयम दो, एक दो दो तीन हो जाए कम से कम, एक ही गाँव में दो तीन हो जाए तो कम से कम बैठने में बातचीत करने में अच्छा लगे, नहीं तो घर वाले दबा देंगे गला। नहीं
नहीं
किसी तारीख के डेट कभी फिक्स नहीं होती है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, एक दो वर्ष ज्यादा भी हो सकता है, एक दो वर्ष कम भी हो सकता है, कम होने के चांसेस कम है, ज्यादा हो सकता है। कोई है?
कोई भाई ने ऐसे पूछा,
हमारा कभी रहेगा या नहीं, जिस भाई ने पूछा उसके पहले उसको पहले ये देखो कि मुझे ज्ञान पूरा बैठा हुआ है। ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा हुआ हो, निश्चय बुद्धि हो, सभी क्लासेज रेगुलर और रेगुलर कर रहा हो, पंक्चुअल हो, तो जरूर काया कंचन बनेगी।
ओ माता निश्चय बुद्धि पक्का।
कौन? लेकिन क्या कह रहे हैं, काया कंचन काया नहीं बनेगी,
बनेगी
कैसी मिट्टी तो है, है? बूढ़ा हो जाए आदमी, बाल सफेद हो जाए, मुंह में दांत न रहे, इससे कोई असर नहीं पड़ता, दालों में धुनिया पड़ जाए, शरीर में शरीर लटक जाए, लेकिन चलता फिरता तो है, चलता फिरता बना रहे, किसी का आदमी न हो। छोड़ने का टाइम आ गया, नहीं तो वैष्णो देवी बने कैसे, वैष्णो देवी माने महालक्ष्मी, सरस्वती, दोनों आत्माएं अपनी भक्तियों में प्रवेश करके पाठ बजा रही है, छोटी मम्मी और बड़ी मम्मी, ये दोनों ये चारों आत्माएं मिलकर के प्रत्यक्ष हो जाए, जो प्रत्यक्ष हो जाएगी वो प्रत्यक्ष होने का टाइम है, आप तो हमें आ रहा तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने का टाइम आ गया ना। हाँ ये जरूर है कि जैसे ब्रह्मा की मूर्ति जब सन 47 में प्रत्यक्ष होना शुरू हुई थी तो कोई ने जाना कोई नहीं जाना, ऐसे ही शंकर की मूर्ति जब 76 में प्रत्यक्ष हुई तो कोई ने जाना और कोई ने नहीं जाना, तो ऐसे यहाँ भी है। बाबा आदित्यवाणी में तो बाबा ने इशारा दे दिया, अफ्रीका वालों ने सेवा शुरू कर दी है, जो सेवा करनी चाहिए असली सेवा अब शुरू की है, अफ्रीका ने शुरुआत की है, इस वक्त एडवांस की सेवा की शुरुआत हाँ हो चुकी है।
तीन
मूर्तियों का काम पूरा हो गया है, शूटिंग का काम खत्म, स्थापना भी हो गई, विनाश भी हो गया, पालना भी हो गई, फिर क्या रह गया, जब तक 100 साल पूरे हो जाएंगे बड़ा ड्रामा शुरू हो जाएगा, गीता पाठशाला तो है, ये आप गीता पाठशाला वहाँ भी आ जाएंगे, अभी गीता पाठशाला मजबूत तो है, जो भगवान एक ही है, एक कौन कौन एक कौन ऐसा है बिंदी बिंदी ये भी बिंदी कौन सी बिंदी है, कौन सी बिंदी परमात्मा, कीड़ा मकोड़ा वो भी बिंदी बताओ, कौन सी बिंदी शिव जयंती कहना चाहिए कि त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए?